जरा फिर को हाँ ऑर्केस्ट्रा पर एक बजाओ तो केशरिया केशरिया, और फिर सब लोग फिर को भगवान के सामने उसको क्या बोलते हैं, उसको वो नृत्य बोलते हैं, लेकिन है वो नाच गाना ही, वो नृत्य नहीं हो पाता। नृत्य तो बहुत ऊंची चीज होती, वो तो इंद्र ने किया था, हम और आप क्या नृत्य करेंगे, लेकिन भगवान के सामने नृत्य के नाम पर जो हम करते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। विचार करना पड़ेगा, बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा प्रभावना के नाम पर जो हम कर रहे हैं। और तपस्या, तपस्या तो मत पूछो, तपस्या तो पर्यूषण में करते हैं, हम 10 दिन के उपवास करते हैं काय के लिए, बाद में फिर बड़ा भारी फंक्शन होगा, फंक्शन बीच में 2 दिन के बाद एक बार पानी पीऊंगा बस, और 10 दिन पड़े रहूंगा आराम से, और 10 दिन के बाद फिर बिंदौनी निकलेगी, क्या निकलेगी वो, फिर बहुत पूरे गाजे बाजे के साथ उस दिन हिम्मत आ जाती चलने की। फिर अभी अभी पाड़ना नहीं हुई है, लेकिन पूरा चक्का लगा के आ जाएंगे 2 किलोमीटर का, मैं गाजे बाजे के फूल माला के साथ में वो मंच पर फिर अवार्ड देने के लिए। हो गया, फिर तो तपस्या हो गई। तपस्या कर्मों की निद्रा के लिए की जाती है या कि बाह्य प्रशंसा लूटने के लिए की जाती है, जरा सा विचार करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10 उपवास करने वाले की प्रशंसा मत करना, उसका सम्मान मत करना, खूब करना, प्रशंसा करना, सम्मान करना, लेकिन मैं तो उस 10 उपवास करने वाले से कह रहा हूं कि कृपा करके प्रशंसा और सम्मान की आकांक्षा मत रखना। वो जो है वो कर करके लाभ ले रहे हैं, और आप व्यर्थ में आकांक्षा करके और अपना पूरा किया कराया गंवा रहे हैं। जो प्रशंसा कर रहा है आपकी, वो तो लाभ ले रहा है आपकी प्रशंसा करके कि मेरा तो सौभाग्य 10 उपवास करने वाले को देख रहा हूं, लेकिन आपने उस आकांक्षा से अपने उन 10 उपवास के पूरे फल को एक क्षण में नष्ट कर दिया। ये विचार करना, इसलिए आज इतनी तपस्या से भी कोई विशेष प्रभाव नहीं। कितने लोगों के तो नाम छपते हैं कि इन्होंने इस बार 10 लक्ष्मी करी है, लेकिन कोई भी तो नहीं है जो कि एक पूरे किसी को प्रेरणा दे सके, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सके कि हाँ मुझे भी ऐसा करना है। और विद्यातिशय, विद्या का अतिशय, आज विद्या का अतिशय तो पांडित्य में कन्वर्ट हो गया है। और बिठाल दो आप कितने कैसे रिजिड होकर के हम अपने उस जैन दर्शन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कितनी कठोरता के साथ, जहां सबके लिए कोई अवसर नहीं है, बस थोड़े से लोगों के लिए ही अवसर है। हमने अपने धर्म को इतना जो व्यवहारिक था उसे इतना दुरूह और मुश्किल बना दिया है विद्वत्ता के नाम पर कि लोगों के करने की इच्छा ही नहीं होती। वे आज उपवास कर सकें ऐसा साहस उनका नहीं जुटता है, क्योंकि हमने उपवास की प्रक्रिया को ठीक से न समझाकर बस इतने ही कि मुंह में पानी भर मत डालना, जिंदगी भर दिन भर भले ही पीने की आकांक्षा करते रहना, लेकिन पानी मत डालना मुंह में, क्योंकि उपवास वही कहलाए। ऐसी व्याख्या हम करेंगे तो कोई उपवास करने तैयार होगा? मुझे इंदौर के स्मरण है, इंदौर के लोग आए थे चतुर्मास के दौरान, जिन बच्चों ने कभी जिंदगी में एकासना नहीं की, जिन बच्चों ने कभी अवक्ष का और बाजार का त्याग नहीं किया, चतुर्दशी के दिन मेरे से कहते हैं कि उपवास करेंगे। मैंने कहा उपवास उपवास मैं नहीं देने वाला, किसी और से ले लो। फिर नहीं नहीं उपवास करेंगे, मैंने कहा ऐसे नहीं, तो फिर क्या करें आप बताइए। हाँ तब फिर ठीक है, मैं बताऊं तब ठीक है, आज शाम तक कुछ भी नहीं खाना, शाम को मेरे से मिलना। ठीक, शाम तक पूरा धर्म ध्यान में निकल गया, शाम को पूछ रहा हूं भूख लगी है, नहीं भूख तो नहीं लगी, थोड़ी बहुत तो लगी होगी, नहीं बिल्कुल भी नहीं लगी, पर जाओ दूध पानी पी कर क्या, नहीं मैं तो बिना उसके कर लूंगा, मैं कह रहा हूं आप पी कर क्या, अभी पहला उपवास है, रात मुश्किल से कटेगी तो अगली बार उपवास करने की हिम्मत नहीं बनेगी, जाओ पी कर क्या। और दूध पानी पी के आए हैं, प्रसन्न चित्त हैं, दूसरे दिन बड़े आराम से पूजा करी है, आहार भी दिया है पूरे 12 बजे तक, फिर भोजन किया, नहीं तो सबेरे से कभी दर्शन मिल जाए, कभी नहा धोले में, कभी जल्दी से गले में कचू तो खा ले, ना पूजा पुसाती है ना आहार देना पुसाता है। अब अगली बार चतुर्दशी को, पिछली बार तो दूध पीना पड़ा था, इस बार सिर्फ पानी पीना, और तीसरे उपवास में फिर पानी की आवश्यकता नहीं है। अब तो आपके हैबिट में आ गए। और उन बच्चों ने नमोकार भक्तांबर और तत्वार सूत्र के आसानी से उपवास कर लिए बाद में। हमें अगर तपस्या और विद्या का प्रचार करना भी है तो इस तरह क्रम क्रम से, मैं अपनी प्रशंसा भी नहीं कह रहा हूं, मैं तो एक प्रोसीजर बता रहा हूं कि हम क्रम क्रम से कैसे आज हम अपने बच्चों को अपने फंडामेंटल्स नहीं बता पा रहे। वे और दूसरे अपने कलीग्स के सामने जब उनसे पूछते हैं कि व्हाट इज जैनिज्म, तो वे चुप रह जाते हैं। जैनिज्म क्या है वो एक लाइन में नहीं बता पा रहे। आपके यहां पर कर्म फिलॉसफी और आपके यहां पर आपके गॉड और यूनिवर्स का क्या डिजाइन है, यूनिवर्स का डिजाइन किसने किया, आपके गॉड का कॉन्सेप्ट क्या है, नहीं मालूम। हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हमने कौन सी विद्या दी है, और हम कह रहे हैं कि हमने बहुत प्रभावना करी है। नहीं, हमें विचार करना पड़ेगा। अकलन को निकलन को स्वामी को याद करना पड़ेगा ज्ञान के मामले में, जिन पूजा के मामले में एक बार फिर से याद करने पड़ेगा मैना सुंदरी को, और अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। और दान के बारे में भामाशाह को एक बार फिर से याद करना पड़ेगा, और तपस्या के मामले में एक बार फिर आचार्य शांति सागर जी महाराज और हमारे आचार्य महाराज को याद करना पड़ेगा। आचार्य चार्य चक्रपुर शांति सागर जी महाराज 35 वर्ष के मनु जीवन में 25 वर्ष के उपवास किए, 9998 उपवास, दो कम थे 10,000। और कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं। आचार्य महाराज ने निर्जल एक साथ 9 उपवास किए, कहीं कोई एडवर्टाइजमेंट है मुझे बताना पड़ रहा आपको, आपको मालूम ही नहीं था, क्योंकि एडवर्टाइज हुआ ही नहीं। ये करने की चीज ही नहीं है, ये तो अपन उत्साहित होते हैं उसको देख करके। इस तरह यदि हम धर्म की प्रभावना का विचार करें तो ही हमारे जीवन में जितना धर्म आएगा, मानिएगा सचमुच उतनी ही ज्यादा धर्म की प्रभावना होगी। वाणी और शरीर से बहुत धर्म की प्रभावना की जा रही है, काश हम थोड़ी सी अपने हृदय में भी धर्म को मन में धारण करके और प्रभावना करें, तो प्रभावना का कोई स्वरूप आज अलग ही होगा। अकेले वाणी से गा बजा के, अकेले शरीर से हिलडुल करके धर्म की प्रभावना नहीं होती। जिसके हृदय में धर्म होता है वो तो अपने मारने वाले को भी बचाने का भाव रखता है। क्या ये गुणभद्र आचार्य का आत्मानुशासन में लिखा हुआ वाक्य है कि जिसके हृदय में धर्म है उसकी परीक्षा कैसे होगी, वो अपने मारने वाले को भी बचाने का भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति ही धर्म की प्रभावना कर सकता है। हमें ऐसे ही धर्म की प्रभावना करने के लिए और अपनी दृष्टि को निर्मल बनाना चाहिए, जिससे कि हमें उस प्रभावना का वास्तविक स्वरूप मालूम पड़े और हम अपने जीवन में उसको प्राप्त करके और अपने जीवन का को भी अच्छा बनाएं, और जिनेंद्र भगवान के मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए अपने जीवन से दूसरे को प्रेरणा दे सकें कि हाँ, वास्तव में यही मार्ग सच्चा है, यही मार्ग श्रेष्ठ है, जो कि अहिंसा का है, जो कि सत्य का है, जो कि अपरिग्रह का है, जिसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है, वही मार्ग श्रेष्ठ है। हम इस तरह अपने जीवन में जब तक उन चीज़ों को नहीं लाएंगे तब तक हम मैसेज क्या दे पाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लाकर अपने जीवन को अच्छा बनाएं और दूसरे को भी जीवन अच्छा बनाने की प्रेरणा दें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक नग्न स्वरूप तुम्हारा है।
ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। वैसे तो सारे व्रत एक ही व्रत में समाये हैं, अहिंसा व्रत में ही सारे व्रत समाये हुए हैं। हम कोई एक भी चीज करते हैं तो पांचों पाप हो जाते हैं। हमारे अंदर आसक्ति उत्पन्न होती है, दूसरे की चीज ग्रहण करने का भाव होता है, चोरी हो गई, ग्रहण करने के लिए उपाय करता हूँ, झूठ बोलता हूँ, वो भी हो गई, और अगर झूठ बोल के भी मैं अपने कार्य में सफल नहीं होता तो मैं मारपीट और दूसरे को तकलीफ पहुंचाने में भी कमी नहीं रखता, और जैसे ही वो चीज़ मुझे प्राप्त हो जाती है फिर मेरे अपने ऊपर मेरा नियंत्रण नहीं रहता, मैं
व्यसनों की तरफ मुड़ जाता हूं, मैं पांचों इंद्रियों के भोगों में आसक्त हो जाता हूं। इस तरह से मेरे भीतर पर पदार्थों के प्रति जो ममत्व का भाव है, जो आसक्ति है, वो मुझे इस तरह मेरे जीवन में मलिनताएं और विकार उत्पन्न करती हैं। क्या करूं, मैं इस ममत्व को कैसे घटाऊं? चीजों के प्रति ममत्व है, व्यक्ति के प्रति ममत्व है, लेकिन ये ममत्व दो तरह का होता है। राग दो प्रकार का है, एक प्रशस्त है, एक अप्रशस्त है। द्वेष तो द्वेष ही है, उसके कोई भेद प्रभेद नहीं है। द्वेष से तो हम फिर भी बच सकते हैं, बचना ही चाहिए सबसे पहले, लेकिन राग में से भी हमें पहले अप्रशस्त राग, विषयानुराग से बचना चाहिए। जो व्यक्ति अपने विषय की सामग्री को सीमित कर लेता है, अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राग है। अपनी शक्ति विचार के मायने क्या है? अपनी आवश्यकता का विचार करके, अपनी शक्ति से मायने वहां पर है, अपनी आवश्यकता का विचार करके वो अपनी आसक्ति को कम रखे। जो जितना आसक्ति घटाएगा वो उतना ही पापों से बच जाएगा, वो उतना ही अपने जीवन को अच्छा बना सकेगा। हमें लगता जरूर है कि जितनी चीजें हम अपने आसपास इकट्ठा करके रखते हैं, वे चीजें हमारे अपने जीवन को सुख देती हैं। सुख देती जान पड़ती हैं, उनसे सुख थोड़ी देर को मालूम पड़ता है, लेकिन अंततः हम उनसे दुख भी पाते हैं। लेकिन ये बात कहने सुनने में तो समझ में आती है, लेकिन अनुभव में हमारे कुछ और ही है। हमें अपने जीवन भर के अनुभव से तो यही लगता है कि इन चीजों में मुझे अभी तक सुख ही मिला है। हालांकि कई बार हमने सुख के साथ दुख भी उठाया है, पर वो दुख हमें थोड़ी देर का जान पड़ता है, उसमें जो सुख है वो ही मालूम पड़ता है। और हम बार बार उन्हीं चीजों में जिनसे हम दुख पाते हैं, फिर से उन्हीं में ममत्व करते हैं और उन्हीं को ग्रहण करने का भाव करते हैं। इस ममत्व को कम करने का सीधा उपाय है कि मेरा ये ममत्व, मेरा ये राग डाइवर्ट हो जाए। मेरा धर्मानुराग अगर जागृत हो जाए तो विषयानुराग में कमी आना अपने आप शुरू हो जाएगी। जिन बच्चों को लगन लग जाती है पूजा प्रक्षाल की सुबेरे से, उनको ये नहीं कहना पड़ता कि तुम टेलीविजन मत देखना, वे नहीं देखते, उनको फुर्सत ही नहीं, वे तो पूजा पाठ में लगे। हम अगर उनको धर्मानुराग की तरफ प्रेरित कर दें, हम अपने आप को भी धर्म ध्यान में लगाए रखें, तो हम इन विषयों की आसक्ति से आसानी से बच सकते हैं। इससे आसान और कोई उपाय नहीं है। और यह कि हम थोड़ा सा इस बात पर विचार करें कि यह विषय आसक्ति, यह जो मेरा ममत्व भाव है वस्तुओं के प्रति, और वो भी वैषयिक, वो भी भौतिक, आध्यात्मिक लगाव होना अलग बात है, पूजा की द्रव्य से लगाव होना अलग बात है, वो भोजन सामग्री से लगाव होने वाला अलग बात है। आप किसी भी बच्चे के हाथ में, हमें तो बचपन का याद है कि जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस मनाया जाता था तो लड्डू चढ़ाए जाते थे, तो माँ जानती थी कि देखो अब इसको लड्डू देख करके, और छोटा है, खाने की इच्छा हो जाएगी, तो पहले से ही जो है बाएं हाथ में एक लड्डू दे दिया, देखो तुम्हें खाने की इच्छा हो तो ये वाला खाना, ये तो भगवान को चढ़ाने का है दाएं हाथ वाला, इसमें आसक्ति न करना। खाने की चीज होते हुए भी चूंकि यह पदार्थ मैं भगवान को समर्पित करने लाया हूं, उसके प्रति मेरा ममत्व तो नहीं है, उसको तो त्याग करने का ही मेरे भीतर भाव जागृत होता है, तब मेरे अंदर वस्तुओं के प्रति दोनों तरह का भाव हो सकता है। मैं चाहूं तो उन वस्तुओं को अपने विषय भोग की सामग्री बना लूं, और चाहूं तो उसी वस्तु को रोज भगवान के सामने समर्पित करके ये विचार करूं कि मेरी आसक्ति इन वस्तुओं के प्रति घटे, क्योंकि आसक्ति के वशीभूत होकर मैं और अधिक पाप में लीन हो जाता हूं। आज वर्तमान में देख रहे हैं अपन पाप के ही साधन बढ़ते चले जा रहे हैं। इतनी अनाप शनाप चीजें बाजार के अंदर निकल जाएं, आवश्यकता नहीं होने पर भी वे चीजें हमें हमारे भीतर बैठे हुए लोभ को जागृत करने में निमित्त बनती हैं। नहीं चाहिए फिर भी ले करके आ जाते हैं, दो चाहिए चार लेकर के आ जाते हैं, चार चाहिए तो 40 जोड़ के रखने का मन होता है। क्यों? उन वस्तुओं को इस तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है कि हमारी आसक्ति पर हम कंट्रोल नहीं कर पाते। देख रहे हैं आज एक से एक चीजें जो हमें हमारे अंदर लोभ को और ममत्व को पैदा करने वाली, जो हमें बांध लेती हैं। हमें लगता है कि ये चीजें, मैं इन चीजों का उपयोग कर रहा हूं, मुझे तो नहीं लगता, चीजें हमारा उपयोग करने लगती हैं। देख लो, तिजोरी हमारी है, पैसे हमारे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात में सोने से पहले 10 बार तिजोरी का दरवाजा देखना पड़ता है, बार बार भीतर झांक के देखते कि धरे हैं कि नहीं धरे हैं। जब चौकीदारी कर रहे आप तो सोच रहे थे कि मैं इन चीजों का मालिक हूं। अरे मालिक होता तो आराम से सोता, मालिक होता तो चाकरी थोड़ी करता। मैं तो सुबह उठता हूं तो सबसे पहले देखता हूं कि सब चीजें ज्यों की त्यों रखी हैं कि नहीं, कोई चीज जो है कहीं यहां वहां तो नहीं हो गई, और अगर हो गई तो मेरे लिए संक्लेश का कारण। मालिक होते तो संक्लेश का कारण थोड़ी बनता, मालिक होते तो जितनी है सो और चली जावे, वो कहलाता मालिक जो दे सके किसी को। मालिक वो नहीं कहलाता, वो गुलाम कहलाता जो चीजों को दे नहीं सके और अपने पास जोड़ जोड़ के रखे रहे। लेकिन ये मालकियत और गुलामी एकदम समझ में नहीं आती। लगता तो ये है कि जितनी मेरे पास चीजें हैं उन सब का मैं मालिक हूं, नहीं, अगर गौर से देखें तो उन सब का मैं गुलाम। जब राजा सिकंदर ने और मुनि महाराज को अपने राज दरबार में बुलाने के लिए सैनिक भेजे थे तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैं तो अपना राजा स्वयं हूं। उन्होंने कहा तुम नहीं जानते सिकंदर को, बहुत बड़ा राजा है। अरे वो सिकंदर, वो तो मेरे गुलामों का गुलाम है। वाह, इतना बड़ा सम्राट और आप कह रहे हैं गुलामों का गुलाम है। जाकर के फौरन कहा सिकंदर को, तो सिकंदर को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा भाई इनसे नाराज होने की बात नहीं है, चल के पूछते हैं ऐसी बात कहने का साहस कैसे हुआ, मैं उनके गुलामों का गुलाम कैसे हुआ। पहुंचे कि भगवान मैंने आपको याद किया, आप आए नहीं, और मैं तो सम्राट हूं और आपने कहा कि मैं गुलामों का गुलाम हूं। तो उन्होंने कहा कि हो गए तुम सम्राट, लेकिन मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि ये बताओ तुम पांचों इंद्रिय और मन के विषयों में आशक्त हो कि नहीं। कहते वो तो सारी दुनिया आशक्त है। तो बोले सुनो, पांचों इंद्रिय और मन मेरे गुलाम हैं और तुम मेरे गुलामों के गुलाम। तो मैंने कौन सी विशेष बात कही कि तुम मेरे गुलामों के गुलाम हो? मैंने पांचों इंद्रिय और मन को अपना गुलाम बना लिया है और तुम उनकी गुलामी करते हो। सुबह से शाम तक एक एक इंद्रिय और मन के विषयों की पूर्ति में लगे हैं, सुबह से शाम तक। इसके अलावा कोई और करते हैं क्या? अपन सोचते जरूर हैं कि हम इन सब के मालिक हैं। नहीं भाई, हम इन सब से बंध गए हैं, हमारी अपनी पराधीनता हमें नहीं दिखाई पड़ती। इनसे हमारी जो आसक्ति है वो हमारे चित्त को मलिन करने वाली है। हम इसका विचार करें। एक रास्ते में गाय चली जा रही है और उसके गले में रस्सी बांध करके कोई व्यक्ति उसको पकड़ के ले जा रहा है, तो श्रीमद रायचंद अपने मुमुक्षुओं के साथ में वहीं से गुजरते थे तो मुमुक्षुओं से पूछा कि क्यों भाई, कौन बंधा है? गाय बंधी है कि आदमी बंधा है? अरे किनले कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अब तत्व चिंतन वाले लोग थे तो उन्होंने कहा ऐसी सामान्य बात कैसे पूछ सकते हैं। तो जरा विचार किया, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो कहने लगे सब शिष्यों ने कहा कि साफ दिखाई पड़ रहा है कि गाय बंधी हुई है, रस्सी से बंधी हुई है। आदमी तो उसकी रस्सी पकड़े हुए है। तो फिर अगला प्रश्न रायचंद जी ने किया कि अगर रस्सी छूट जाए तो ये बताओ कि आदमी गाय के पीछे भागेगा कि गाय आदमी के पीछे भागेगा? तो उनने कहा आप समझ में आ गया कि कौन बंधा हुआ है, जो अनबंधा है वो भागेगा उसके पीछे। लेकिन यही छोटी सी चीज अपन के समझ में नहीं आती। एक एक चीज हमने ये सोच करके इकट्ठी करी है और करते भी हैं, दूसरे के पास देख करके उसे ग्रहण करने का भाव करते हैं और अपने पास है सो उसके संरक्षण संवर्धन का विचार करते हैं, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि जिस वस्तु के नहीं होने पर पीड़ा, जिसके होने पर उसके कम होने की पीड़ा और होने की लालसा, और जिसके छिन जाने पर होने वाली पीड़ा, जो जब तक नहीं थी वस्तु तब भी नहीं होने की पीड़ा दे रही थी, जब से घर में है सो अपनी सुरक्षा हमसे करवाती है और कमती होने का भान देकर के मुझे और अधिक दुख देती, और जिस दिन ये वस्तु चोरी चली जाएगी छिन जाएगी उस दिन भी मुझे पीड़ा देगी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी समझ में नहीं आता है हम उन चीजों के प्रति क्यों आसक्त हो जाते हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी थे, वे कहा करते थे कि भैया और व्रत ले चाहे न ले, एक ही व्रत ले लो, तुम श्रावक हो, परिग्रह का परिमाण कर लो। जिस व्यक्ति ने अपने परिग्रह या इच्छाओं का नियंत्रण कर लिया, अपने परिग्रह को सीमित कर लिया, उस व्यक्ति से फिर पाप भी अल्प भी होंगे, क्योंकि उसी परिग्रह के लिए मुझे हिंसा करनी पड़ती, उसी के लिए झूठ चोरी करना पड़ती, और वो परिग्रह मेरे पास ज्यादा संचित हो जाए तो देख लो आप, जिसके पास जितना अधिक परिग्रह है उसको धर्म ध्यान करने की फुर्सत उतनी कम है। एक तो उसको नहीं है जिसको सवेरे से ठेला ले जाना है और रोटी के लिए दो पैसे कमाना है, या तो उसको फुर्सत नहीं है, सो वो तो मजबूर है उसकी, वो अपनी आजीविका चलाएगा तब बाद में थोड़ा बहुत धर्म ध्यान करेगा। लेकिन और भी हैं जिनके पास सर्व साधन संपन्न है, जिनके पास दो चार पीढ़ी तक खा सके इतना सब कुछ है, उनको भी फुर्सत नहीं है, उनके मन में ऐसी इच्छा ही नहीं होती कि सवेरे से अभिषेक और पूजा करके आ जाएं कि भगवान के चरणों में बैठ करके दो बातें धर्म की सुन लेवें, या कि शास्त्र जी का स्वाध्याय कर ले में अपने कल्याण के लिए थाली पर बैठते समय संयम धारण कर सकें, तप और त्याग कर सकें। त्याग तो करते थोड़ा बहुत दे करके अपने पूरे को सुरक्षित करने के लिए करते कि बाकी सुरक्षित रहो, आप इसको थोड़ो सो दे दो जी में किसी की नजर न लगे कि देते भी तो हैं। ऐसा कर तो लेते हम, लेकिन इसमें हमारा भला नहीं है। हम जब तक अपने परिग्रह कितना भी दान दे दें, अगर परिग्रह का परिमाण नहीं है तो वो त्याग, जो इच्छा एक अनंत इच्छाओं से युक्त व्यक्ति है उसके द्वारा किया गया त्याग भी किसी न किसी इच्छावश ही किया गया हो। जिसने परिग्रह का परिमाण कर लिया है उसके द्वारा जो त्याग किया जाता है, उसके द्वारा जो वस्तु दूसरे को दी जाती है, वो वाकई में उसका त्याग है। क्योंकि आपने नहीं सुने हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बनारसी दास जी के जीवन का उदाहरण है, परिग्रह का परिमाण था, थोड़ी सी तो चीजें घर में थी और चोर आकर के चोरी करने के लिए सारा जितना बना उसने पोटली में बांध लिया था, जब उठाते नहीं बना था तो जग रहे थे तो धीरे से उठा के अंधेरे में उसके सिर पे पोटली रख दी थी। चोर को आश्चर्य हुआ कि किसने उठा के रख दी, जो भी हो जैसा भी भागो यहां से, पोटली लेकर के घर पहुंचा, सामान खोल के देखा तो मां तो पहचान गई, कह ली तू पंडित के यहां चोरी करने गया था, ये सामान तो पंडित का है, जा सवेरे से लौटा गया। और जब वापस लौटाने आए तो बनारसी दास जी के वो हाथ जोड़े है कि आप अपना सामान ले लो, और बनारसी दास उसके हाथ जोड़ रहे कि भैया जी तो हमने जैसे ही तुम ले गए थे सो हमने और सीमा कम कर ली थी कि तो और अच्छा रहो चलोगा उसमें अच्छी शांति रहेगी। परिग्रह परिमाण करने वाले के जीवन में ही ऐसी अनाशक्ति घटित हो सकती है। हम और आप जो इस तरह से बहुत धर्म ध्यान करते हैं, उनके जीवन में भी अगर परिग्रह का परिमाण नहीं है तो उनके द्वारा किए गया धर्म ध्यान भी मन को शांति क्यों नहीं दे रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आसक्ति तो मुझे घेरे रहती है, मैं मंदिर में पूजा करता हूं तो घंटे भर करता हूं, 23 घंटे तो मेरी आसक्ति देखते ही बनती है कि कितनी आसक्ति, यहां जरूर कहता हूं कि क्षुधा रोग विनाश न नैवेद्यम, और वहां जाकर के हाव हाव मची हुई है कि ये खाना और ये खाना और शाम के लिए क्या बनना है, और आज तो बहुत दिन से ये चीज नहीं खाई, और वहां तो कमिट करके आए थे भगवान के सामने कि जिंदगी हो गई खाते खाते, आज तो मैं आपके सामने ये नैवेद्य चढ़ाता हूं, मेरे भूख मिट जानी चाहिए। और यहां पर मेरा व्यवहार देखने में तो यही आता है कि मेरे अंदर क्षुधा की वेदना, मेरे अंदर जो आसक्ति है वो जरा भी नहीं घटती है। हमें विचार करना चाहिए अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण अर्थात अपनी इच्छाओं का परिमाण है, कोई एक लिमिट तो हो हमारे अपने जीवन में इन सब चीजों की कि कहां तक, नहीं तो ये तो अंतहीन यात्रा है। मैं कितना भी अगर अपने अंदर प्राप्त करता चला जाऊं तब भी उसमें कहीं कोई शांति नहीं मिलेगी। एक बार एक राजा साहब ने किसी बीमार हो जाने पर किसी ने कहा कि राजा साहब अस्वस्थ हो गए हैं, और वो तो स्वस्थ तभी हो सकते हैं जबकि किसी बहुत खुश और बहुत आनंदित व्यक्ति की पोशाक उनको ला करके दी जाए। अब निकले सैनिक ढूंढने के लिए कि जो बहुत आनंदित हो वे बहुत खुश हो वे उसकी पोशाक लानी है, तो जिसके पास बढ़िया बढ़िया पोशाकें थी उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आप सुखी तो हो आनंदित तो हो, उनने कहा और तो सब ठीक है, फलानी चीज की कमी है, और तो सब ठीक है, लड़का नहीं है, और तो सब ठीक है लेकिन नाती नहीं हुआ है, और तो सब ठीक है लेकिन पैसा थोड़े कम है, दुनिया भर की चीजें, और तो सब ठीक है लेकिन सबके साथ लगा था कि और तो सब ठीक चल रहा है लेकिन कछु ने कछु थोड़ी ने थोड़ी तो है तकलीफ। अब इनकी पोशाक से तो कोई काम ही नहीं आएगा क्योंकि उनने तो कहा था कि बिल्कुल सब प्रकार से और खुश हो वे आनंदित हो वे उसकी पोशाक लेके आना। सो जंगल जंगल में अब गए कि शायद वहां कहीं मिल जाए, तो एक जो है व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ और गायें चरा रहा है और बांसुरी बजा रहा है, बड़ा आनंदित है प्रसन्नचित्त है। तो इनको लगा कि इससे पूछें, उससे पूछा कि भाई कोई दुख तो नहीं, कहने लगा नहीं सब प्रकार की आनंद है, तो केले तुम अपनी पोशाक दे दो। तो उसने कहा देख लूं है ही नहीं, अकेला एक ठो परधनिया पहने था वो लगोट लगाए हुए था, अब कहां से वो पोशाक दे देवे, जो आनंदित है उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं, और जिसके पास दुनिया भर की चीजें हैं उससे पूछो जरा कि कौन सा आनंद है उसके पास। ये जरा सा समझने वाली चीज है लेकिन हमें एकदम नहीं समझ में, हमें तो समझ में ये आता है कि वो जो कल मैंने पोशाक पहनी थी और चार लोगों ने वो देखी थी उसका क्या आनंद है, और आज मैं इस तरह की पहनूंगा तो उसका एक अलग आनंद होगा। ये अभी हमारे अपने कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं आई है। लगता जरूर है कि हमें चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में उस दिन कहलाएगी आना जब हमारे व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तब कहलाएगा कि अब समझ में आया। अभी तो सिर्फ बुद्धि में समझ में आया है, जीवन में उस दिन समझ में आएगा जिस दिन हमारे जीवन में वो सारी चीजें उतर जाएंगी, परिग्रह परिमाण या कि अपरिग्रह की साधना या कहें अचौरी, सारी चीजें इसी में आ जाती हैं। हम अपने ममत्व को घटाएं धीरे धीरे करके, अगर चार चीजों से काम चलता है तो हम पांचवी चीज ग्रहण ना करें, इतना तो कर ही सकते हैं। चलो ज्यादा नहीं कर सकते तो भाई जितना है उससे दूना हो जाने पर मैं छोड़ दूंगा, इतना भी नहीं कर सकते, अनंत इच्छाएं हैं उनसे तो अच्छा है कि जितना मेरे पास आज की हालत में है उससे दूना हो जाने पर छोड़ दूंगा। एक मुनि महाराज बन गए और उन्होंने मुझे जब मिले थे पिछले दो वर्षों पहले तो मुझे अपना संस्मरण सुनाया था कि महाराज आचार्य महाराज हमारे गांव से निकले, यहीं राजस्थान के हैं, उस समय सन 1975 के लगभग की घटना है। तो बोले जब यहां से निकले तो मेरे मन में उनको आहार देने के बाद मन में आ गया कि एक पेटी है मेरे पास, एक पेटी मतलब 1,00,000 रुपए संपत्ति उनके पास 1,00,000 के लिए एक पेटी है। हमने सोचा जब चार हो जाएंगी, अगर मेरी चार हो गई अगर तब तो फिर मैं घर ही छोड़ दूंगा क्योंकि बहुत है, कभी चार होना नहीं है 4,00,000, जिंदगी में 1,00,000 से ज्यादा कभी जिसने नहीं देखा हो, 50-55 साल की उम्र हो गई। तो तुमने सोचा कि अगर हमारे जीवन में चार पेटी हो जाएगा धन तो हम तो छोड़ देंगे। और उनने अपना संस्मरण सुनाया कि महाराज मैंने बहुत व्यापार किया, बच्चे पाल पोस के बड़े किए, जिंदगी में 1,00,000 रुपए से ज्यादा का कभी कुछ काम नहीं किया, और 6 महीने के अंदर ये स्थिति बनी कि मेरे 4 पेटी से ज्यादा संपत्ति हो गई। मैं समझ गया कि अब मेरे कल्याण का रास्ता मुझे मिलने वाला है। जिस दिन 4 पेटी हो जाएगी, मैंने सोचा था कि पानी पात्र में आहार करूंगा, इसलिए फिर मैं छोड़ करके सारा कुछ और यहां पर मुनि बन गया। इतनी छोटी सी चीज हमारे जीवन को इतना बड़ा परिवर्तन दे सकती हमारे द्वारा, जबकि उनके पास था कुछ भी नहीं, चौगना रख लिया। इसलिए हम कह रहे हैं आपसे कि जितना है उसका दूना हो जाने पर मैं सब छोड़ दूंगा, विरक्त हो जाऊंगा। इतना भी संकल्प कर लें तब भी बहुत छोटी सी चीज नहीं है। विनोबा 13 महीने तक जेल में रहे सत्याग्रह की वजह से, और जेल में क्या सामान मिलता है? ओढ़ने का एक कंबल, बिछाने की टाट, पानी पीने का एक ठो लोटा, शुद्धि करने का एक ठो लोटा, था खाने के लिए थाली भी नहीं मिलती, हाथ पर खा लो आराम से, इतनी ही चीजें कुछ मिलती हैं। और 13 महीने उन्हीं चीजों में उनने अपना जीवन व्यतीत किया। वापस जब लौट करके आश्रम में आए तो कमरे में उनके जो सामान था सब उन्होंने हटा दिया, पानी पीने का लोटा, शुद्धि करने का एक लोटा और एक टाट पट्टी और ओढ़ने का कंबल और पहनने के वस्त्र इतने ही रखे। सबने कहा कि बाप विनोबा, अब तो बाबा आप जेल से वापस लौट के आ गए हैं, अब तो अपने आश्रम में आ गए, क्या कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि जब 13 महीने उतनी ही चीजों से बिताए जा सकते हैं तो पूरी जिंदगी बिताई जा सकती, मुझे अपनी आवश्यकता मालूम पड़ गई कि आवश्यकता तो उतनी ही है, बाकी सब तो जो है मैंने व्यर्थ ही जोड़ करके रखा। लेकिन ये चीज अपन के समझ में नहीं आती, अपन को तो जैसे जैसे चीजें और बढ़ती जाती लगता ये भी आवश्यक है, ये भी आवश्यक, ये भी रख लो, देखो उसकी जरूरत पड़ी थी, कल तो जरूरत पड़ी थी, और जब वो चीज नहीं थी तब उसके बारे में कुछ भी भान नहीं था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हमारी आसक्ति बढ़ती, जैसे जैसे संचय बढ़ता जाता, वैसे वैसे और आसक्ति बढ़ती है। इस तरह से अगर हम चाहें तो एक मैं तो ये सोचता हूं, आज तो ब्याह ही वहीं से शुरू होता है जिस विवाह में परिग्रह परिमाण और भोगो भोग की सीमा होनी चाहिए थी, विवाह ही वहां से होता है। अनाप शनाप भोगो भोग की सामग्री और अनाप शनाप परिग्रह से शुरुआत होगी।
वीर प्रभु वंदना सुनो, वीर प्रभु जिंदगी में गीत का सितारे।
सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में बैठकर अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। हमने ये समझ लिया है और जीवन में अनुभव भी कर लिया है कि बिना श्रद्धा और विश्वास के ना हम संसार में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, ना हम संसार से पार होने के रास्ते में भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास का संचय करें। श्रद्धा हमें निश्चिंतता देती है। जैसे एक बेटा अपने पिता का हाथ पकड़े और मेले में घूम रहा है, बहुत खुश है, आनंदित है, पिता ने उसे मिठाइयां दिला दी हैं, उसे खिलौने दिला दिए हैं और वो पिता की उंगली पकड़े हुए पूरे मेले का आनंद ले रहा है और अचानक भीड़ में उसका हाथ छूट जाता है। अब वो उतनी भीड़ में अपने पिता को यहां से वहां बेतहाशा दौड़ करके ढूंढ रहा है और उसे वो नहीं मिल रहा है। अब उससे कोई पूछे कि क्या मेले में आनंद है, वो तो रोने रोने को है। उसका मन वो खिलौने जो थोड़ी देर पहले उसे आनंद दे रहे थे, वो मिठाइयां जो उसे थोड़ी देर पहले खुशियां दे रही थी, वो सब उसे व्यर्थ और बेमानी मालूम पड़ रहा। सारे मेले का आनंद छीन गया, मेला वहीं के वहीं है, सब चीजें वहीं हैं, कुछ भी तो नहीं बदला। लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया उसके तो जीवन में, उसका हाथ छूट गया है। उसका हाथ पिता के हाथ में था, उसे एक सहारा था, एक विश्वास था कि मैं इसे इतने बड़े मेले में भी खोऊंगा नहीं और अब तो मैं खो ही गई, अब तो मैं अपने घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा। ये अनिश्चितता उसके जीवन में आई कैसे, उसके जीवन का आनंद कैसे छिना? हमारे अपने जीवन में अनिश्चितता क्यों हुई, हमारे जीवन का आनंद क्यों छिना? सिर्फ इसी वजह से कि जिनके प्रति हमें श्रद्धा रखनी चाहिए थी, जिन पर हमें विश्वास रखना था, जिनके सहारे हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी थी, हमने उनका ही साथ छोड़ दिया या कि हमने लिया ही नहीं। जरूरी है कि हम उनका साथ लें, उनका सहारा लें जिन्होंने अपने जीवन को अच्छा बना लिया या जो अपने जीवन को अच्छा बनाने के प्रोसीजर में, यह कि जो हमें निरंतर उपदेश देती है जिनवाणी माँ अपने जीवन को अच्छा बनाने के, हम इन तीनों के प्रति जब तक अपने भीतर श्रद्धा नहीं लाएंगे, जब तक हम इनके प्रति डिवोट नहीं होंगे, हमारा इंक्लाइनेशन नहीं होगा, हमारा झुकाव नहीं होगा, हमारा लगाव नहीं, तब तक हमारे जीवन में वास्तव में हम अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया शुरू ही नहीं कर पाए। इसलिए जैन दर्शन में बहुत वजनदारी के साथ ये बात कही जाती है कि अगर हमें मोक्ष मार्ग पर चलना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन जरूरी है। क्यों इतना आग्रह है दृष्टि की निर्मलता का? इसीलिए, क्योंकि दृष्टि की निर्मलता ही हमें ये बताती है कि किस में हमारा भला है, किस में हमारा बुरा है। हमें तो संसार में भले बुरे का भान हमारा अपना क्राइटेरिया है। हमें लगता है कि जिन चीजों में हमें भौतिक सुख मिलता है वो चीज भली है, जिनसे कि हमें भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिलती हैं वो चीजें बुरी हैं। हमें तो जिनसे संसार बढ़ाने का कहना चाहिए सहारा मिलता है वो सब अच्छे हैं, जिनसे हमारा संसार नहीं बढ़ता है वो सब व्यर्थ है। जिसमें हमें लाभ मालूम पड़ता है वो चीज़ अच्छी मालूम पड़ती, जिसमें हमें सांसारिक हानि मालूम पड़ती वो चीज़ हमें बुरी जान पड़ती। हमारे तो भले बुरे का क्राइटेरिया यही है। हमारी ये दो आँखें कुल इतना ही देख पाती हैं, इसके पार देखने की सामर्थ्य हमारी इन आँखों में नहीं। लेकिन एक आँख वो प्राप्त होती है जब हमारे जीवन में सच्चे देव विश्वास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब मालूम पड़ता है कि संसार के पार भी कोई एक चीज है जो मेरी अपनी स्वाभाविक है, जिसे प्राप्त करने के बाद मेरे जीवन में सिवाय शांति और आनंद के कोई दुख पीड़ा और संक्लेश नहीं है। ऐसा हमारे भीतर आत्मविश्वास जब जागृत हो जाए तब हम उस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं और फिर देखते हैं हम कि सचमुच जैसे ही मैंने उस दृष्टि को प्राप्त किया मेरे भीतर बहुत सारी क्वालिटेटिव चेंजेस होना शुरू हो गए, बहुत सारी गुणवत्ता मैंने हासिल कर ली। मैंने देखा कि मेरे जीवन में अब सच्चे रास्ते पर चलते हुए अत्यंत निश्चिंत आ गई है। कल तक तो मैं उस रास्ते पर चलने से भयभीत होता था, कल तक तो मेरे मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठते थे, संदेह उत्पन्न होता था। अब मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, एक निश्चिंता है, एक निर्भय होकर के हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अब सांसारिक आकांक्षाएं मुझे नहीं खेलती, अब मैं संसार की इच्छाओं की पूर्ति में ही अपना पूरा वक्त नहीं निकालता हूँ। मेरे पास कुछ वक्त बचता है जिसमें कि मैं उन इच्छाओं से ऊपर उठने की प्रक्रिया को भी करने लगा हूँ। कल तक तो मैं उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए चिंतित रहता था, आज मेरी इच्छाएं मैंने घटा ली हैं, इसलिए उनकी पूर्ति बहुत जल्दी हो जाती है। मेरे पास बहुत सारा समय बचता है जिसमें कि मैं उन और इच्छाओं से जो शेष रही हैं उनसे भी ऊपर उठने की प्रक्रिया कर पाता हूँ। अब जब मैं अपने रास्ते पर ठीक ठीक चलने लगा हूँ तो मेरे मन में अब किसी के प्रति घृणा नहीं होती, अब किसी से मेरे मन में द्वेष नहीं है, और बहुत सारे वाइब्रेशंस होने के बाद भी मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं अपने एक जो मैंने रास्ता चुना है, जो मेरे श्रद्धा और विश्वास का रास्ता है, उस पर आसानी से चलता हूँ। पता नहीं कितनी तो मान्यताएं संसार में फैली हुई, पता नहीं कौन लोग किस किस को देव मान लेते हैं, किस किस को गुरु मान लेते हैं, किस किस को धर्म मानते हैं। हिंसा को भी धर्म मानने वाले लोग इस संसार में हैं, परिग्रह से सहित और आरंभ सारंभ में लगे हुए को भी लोग अपना पथ प्रदर्शक मानकर बैठे हुए हैं, और अभी जिनों का संसार समाप्त नहीं हुआ है उनके चरणों में माथा झुका करके उन्हें अपना भगवान मानने वाले लोग भी यहाँ हैं। होने दो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। मैंने तो वीतरागी को भगवान माना है, वीतरागता के रास्ते पर चलने वाले को गुरु माना है, और वीतरागता को उपदेश देने वाली मेरे जिनवाणी माँ है। मैंने इनका सहारा लेकर के अपने रास्ते पर चलना शुरू किया है, अब मैं इस रास्ते से विचलित नहीं होगा। हाँ, अगर कोई कदाचित इस रास्ते पर चलते हुए भी थोड़ा बहुत चूक जाएगा तो मैं उसकी उस भूल को भी नहीं देखूंगा। मैं अपनी भूलों को जरूर देखूंगा, और किस लिए देखूंगा? मैं अपनी उन भूलों को इसलिए देखूंगा ताकि मैं उनको सुधार सकूं। अगर दूसरे की भूल दिख जाती है, दूसरे की गलती दिख जाती, मैं देखूंगा नहीं। मैं दोष दर्शन की दृष्टि नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि तो निर्मल हो गई। कल तक तो मेरी दृष्टि इसीलिए मलिन थी कि मैं अपने बारे में कम देखता था, दुनिया भर के बारे में देखता, और तो दुनिया के बारे में भी कैसा देखता था, भला नहीं देखता था। दुनिया के बारे में उसका जो फॉल्ट्स हैं, जो इन्फॉर्मिटीज हैं, वो ही देखा करता था। नहीं, अब तो सच्चे रास्ते पर चलते समय मुझे अपनी इन्फॉर्मिटीज दिखती हैं, मुझे अपने दोष दिखते हैं। दूसरे के दोष देखने की मेरी प्रवृत्ति नहीं रही। कभी उसमें कोई दोष दिख भी जाते हैं अपने साधर्मी में, तब फिर मैं इस बात के लिए चिंतित होता हूं कि वो दोष उसमें से कैसे परिमार्जित किए जा सके, उनको कैसे निकाला जा सके। कल तक मैं दोष देखता था दूसरे को नीचे गिराने के लिए, आज अगर दोष दिख जाते हैं तो मैं चिंतित हो जाता हूं उन दोषों को निकालने के, अपने भी और दूसरे के। अब दृष्टि कितनी निर्मल हो गई, और इतनी नहीं, अगर कोई चलते चलते सच्चे रास्ते पर, या मैं स्वयं भी और रास्ते पर गिर ही जाता हूं, विचलित हो जाता हूं, तो अब मैं अपने को भी और दूसरे को भी एक सहारा देता हूं और संभाल करके आगे बढ़ा देता हूं। अब तो हृदय में प्राणी मात्र के प्रति और विशेष रूप से भूत वृत्यनुकंपा, प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा है, और जो साधर्मी जन है उनके प्रति वात्सल्य है, उनके प्रति हृदय में अनुराग है। अनुराग कैसा? धर्म और धर्मात्मा के प्रति अनुराग, यानी धर्म और धर्मात्मा का गौरव, उसका सम्मान कभी कम ना हो। धर्म और धर्मात्मा पर विपत्ति आवे तो मैं उसका साथ न छोड़ू। धर्म और धर्मात्मा इन दोनों का मैं सम्मान करूं, और इतना ही नहीं, जो साधर्मी हैं उनके लिए समय समय पर प्रेरित करके मैं धर्म की तरफ ही बढ़ाता जाऊं। मैं अभी तक तो लोगों की सांसारिक रूप से मदद करता था, उनके संसार बढ़ाने में सहयोगी बनता था, नहीं अब मैं अपने साधर्मी को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहयोगी बनता हूं। यह है वात्सल्य, जैसे बने तैसे तन मन धन तीनों से मुझे मोक्ष मार्ग में उसका सहयोगी बनना है। इसलिए कभी मुझे अगर धन से मदद करनी पड़े तो करूंगा। भैया तुमने मंदिर जाना क्यों बंद कर दिया? भाई क्या करें, बड़ी मुश्किल में हूं, विपत्ति में हूं, इतने इतने लोगों का कर्ज देना, घर से बाहर तो निकलने की हिम्मत नहीं पड़ती है, मंदिर क्या जाऊंगा मैं? अरे तो आपने मुझे नहीं बताया, मैं आपकी क्या मदद कर सकता? अरे थोड़ा उनको बोल दो कि मुझे तंग ना करें वो, मैं उनका सब चुकता कर दूंगा, मेरे पास जितना है उतना तो मैं कर ही रहा हूं। ठीक है, मैं जाकर के उनको कह दूं। शरीर से अगर आपके पास धन नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप धन से ही मदद करें, साधर्मी की उसकी शरीर से मदद कर देंगे, ठीक है आप निश्चिंत हो जाइएगा, मैं आपके उस काम को कर दूं। ऐसे ये वात्सल कहलाएगा। वात्सल का अकेला मतलब ये नहीं समझना कि हमारा तो खूब प्रेम है अपने साधर्मी से, जब अपना काम सटता है तो हम उनके साथ हो जाते हैं, नहीं, ये ऐसा वाला प्रेम तो सबका साधर्मी से होता, अपना स्वार्थ पूर्ण अपेत कैत्वा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी छल कपट के, जो एक नैसर्गिक, जो एक स्वाभाविक प्रीति होती है वो साधर्मी के प्रति हो, और हम हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहें, जिस प्रकार से भी उसे धर्म के रास्ते पर लगाना पड़े, जिस प्रकार की मदद की उसे आवश्यकता हो वो हम करें। ये वात्सल्य हमने कल थोड़ा सा समझा था। वात्सल्य और प्रभावना दोनों इतनी जुड़ी हुई चीजें हैं कि जितना वात्सल्य होगा उतनी ही प्रभावना, ये ध्यान रखना। आज इन दोनों चीजों को अलग अलग करके देखा जा रहा है। समाज में वात्सल्य भले ही ना हो लेकिन प्रभावना के नाम पर, जय जयकार के नाम पर सैकड़ों आयोजन कर लेंगे। उन आयोजनों में कौ समाज का और विभाजन हो जाए, देखने में आता है नहीं आता आपको? देखने में आपके छोटे गांव में तो प्रेम भाव, जितने छोटे गांव रहेंगे उसमें उतना प्रेम रहेगा, आप जितना बड़े में चले जाइएगा फुर्सत ही नहीं है। वहां आयोजन भी होंगे तो चार लोग मिलकर के कर लेंगे, बाकी चार को खबर तक नहीं होने देंगे। वे चार भी कल तैयारी करेंगे, तुमने हमें नहीं बुलाया था, हम अपना फंक्शन एक अलग कर लेंगे, तुम बैठे रहो। इस तरह से हम सोचते हैं कि हमने प्रभावना कर ली, नहीं, प्रभावना तो बिना वात्सल्य के संभव ही नहीं है। हमने देखा है कि शमाउनी का फंक्शन हो जाता है लेकिन शमाउनी सबकी अपनी अपनी मनाई जाती है, सबकी शमाउनी अलग है। अरे शमाउनी मना रहे वो भी अलग है। मेरे कहने का आशय कि प्रभावना आज हम समझने जा रहे हैं कि वास्तव में प्रभावना क्या है, लेकिन हम ये ना भूल जाएं कि वात्सल्य के बिना कोई प्रभावना हो सकती है। वात्सल्य पहले जरूरी है। श्रीमद रायचंद के जीवन की घटना अत्यंत प्रसिद्ध है। वे जौहरी थे, हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, और एक व्यापारी से उनका कमिटमेंट हो गया कि वे इतने में उससे हीरे लेंगे। और स्थिति ये हुई कि कीमतें बहुत घट गई और उस व्यापारी को उस बताई हुई कीमत पर हीरे देना बहुत मुश्किल हो गया। अगर वो उतनी कीमत पर श्रीमद् रायचंद के हीरे दे, उनकी कीमत चुकाए, तो उसको तो अपना घर और सारी संपत्ति बेचना पड़ेगी, तब भी नहीं चुका गए। ऐसी स्थिति में उसने घर से निकलना और मंदिर जाना तक बंद कर दिया। 8 दिन हो गए, श्रीमद् रायचंद को मालूम पड़ा कि वो इसलिए कल तक तो वचन का में आता था, मंदिर आता था, आज तो 8 दिन से दिख ही नहीं रहा। श्रीमद् रायचंद खुद उसके घर पहुंच गए, दरवाजा खुलवाया तो बाहर आके उसने हाथ जोड़ लिए कि आप क्यों आ गए तकादा करने के लिए, मैं तो खुद ही चुका दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा, मैं आपका एक एक पाई। तुमने कहा कि उसके लिए नहीं आया, क्या तुम मुझे अपने घर में बैठने के लिए भी नहीं कहोगे? अरे नहीं नहीं आप आइए तो बैठिए, मैंने कोई कागज तुम्हें लिख करके दिया था ना अपने पैसों के बारे में? हाँ दिया तो था, आप फिर से क्यों ये सब बातें कर रहे हैं? मैं तो अब चुकता कर दूंगा, मेरा विश्वास रखिए, जरा मुझे कागज दिखाओ। कागज हाथ में लेकर के बोले, इतने से कागज की लिखा पड़ी मैं कि तुम्हें मेरे इतने पैसे देने, तुमने अपना धर्म छोड़ दिया, इतना संकलेश कर रहे इतने से कागज के पीछे, और कागज के पन टुकड़े टुकड़े करके वहीं फेंक दिए। सुनो, श्रीमद् रायचंद जैनी है, वो दूध पी सकता है, किसी का खून पीना नहीं जानता। बताइएगा, ये उदाहरण है। किस बात का उदाहरण है? ये साधर्मी के प्रति उसकी विपत्ति में सहारा देने का है, ये वात्सल्य का है। इससे होने वाली प्रभावना, इसके लिए कोई पंपलेट छपवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना कोई मंच और माइक लगाने की आवश्यकता पड़ेगी इस प्रभावना के लिए। आत्मा प्रभाव निया रत्नत्रय तेजसा सततम एव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय जिन धर्म। प्रभावना की परिभाषा तो आचार्य भगवंतों ने यही लिखी है, ये अमृतचंद्र आचार्य ने लिखी है। और जरा आचार्य समनभद्र स्वामी के चरणों में बैठे तो अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत यथायथम जिन शासन महात्मा प्रकाश स्यात् प्रभावना। और आचार्य कुंदकुन स्वामी के चरणों में बैठे तो एक कदम आगे बढ़के कहते हैं कि विद्या रय मारूढ़ मनोरह पहे सुखण जो चेदा सो जिन नान पहावी सम्मा दिखी मुनि। चलें अपन देखें कि आचार्य भगवंत प्रभावना का क्या स्वरूप बना रहे बता रहे हैं, और हमने आज वर्तमान में प्रभावना का क्या रूप बना लिया है, और सोच रहे हैं कि जैसे हम वास्तव में प्रभावना कर रहे हैं, अगर इन आचार्य भगवंतों की वाणी के अनुसार देखें तो हमें अभी प्रभावना करने का ढंग भी नहीं मालूम, प्रभावना क्या करेंगे। क्या कह रहे हैं कि आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा सत्तम एव, अपने आत्मा को रत्नत्रय के तेज से प्रकाशित करना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। लेकिन ना हमारे मन में श्रद्धा है, ना आत्मज्ञान है, ना सदाचरण है, हम किस प्रभावना की बात कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे जीवन में श्रद्धा आत्मज्ञान और सदाचरण आना चाहिए, तब शुरुआत होगी धर्म की प्रभावना। टीका लगा लेने से और बढ़िया पंचा पहन लेने से धोती दुपट्टा सफेद अगर प्रभावना होती होती तो आज तक हो गई होती, और लोग धर्म की प्रशंसा करने लगे होते, लेकिन धर्म की प्रशंसा की जगह पर कंपटीशन करने लगे हैं लोग, आप जितना बड़ा जुलूस निकालेंगे हम उससे दुगना निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि जीवन में जो घटित होकर के प्रभावना होती है उसके लिए वर्षों लग जाते हैं, और बाहर के करने में जित बुंदेलखंड में कहते कि जितो गुड़ डारो उत्तो गुरी रहो, जितने पैसा खर्च करो उत्ता तामझाम जोड़ लो आप, लेकिन भीतर तो जितने पैसे के प्रति आसक्ति घटेगी तब आत्मा की प्रभावना हो। मुश्किल ये है उस आत्मा को प्रकाशित करने की प्रक्रिया आज लगभग समाप्त प्राय सी है। रत्नत्रय को धारण करने वाले कितने बिरले लोग हैं, या रत्नत्रय की उपासना करने वालों की संख्या कितनी सी है, या जो अपने जीवन को रत्नत्रय बना लेते हैं। अरे भाई, जीवन से जिसके और धर्म प्रकट होने लगे उससे बड़ी धर्म की प्रभावना और कोई नहीं कर सकता। जीवन से धर्म कैसे प्रकट होता? भैया उनकी दुकान पर जाओ, कितने प्यार से बात करते हैं, कभी हमने गुस्सा करते और ऊंचा बोलते नहीं देखा। भाई जैनी आदमी है, अरे भाई कभी फ्रॉड नहीं करते हैं, जितना है उतने में देते हैं, दो पैसे जो है वो अपने चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन किसी को परेशानी में नहीं डालते, गरीब को देखकर उसकी मदद करते हैं। देखो तो अपने रास्ते जाते हैं, अपने रास्ते आते हैं, किसी के छल कपट और प्रपंच में नहीं पड़ते। कैसा सादा जीवन है इनका, कैसे ऊंचे विचार हैं इनके। ये बात जितनी प्रभावित करती है, कितना बढ़िया पंपलेट छपा है इनका, और कितना भव्य पंडाल और कितनी जगरमगर रोशनी हुई है। ये तो बहुत बहुत आसान है, लेकिन आत्मा कितनी प्रकाशमान हुई है, आत्मा में कितनी गुणवत्ता आई है, वास्तव में प्रभावना तो ये है। तो दान तपो जिन पूजा विद्यातिशय, चार चीजें हैं, इससे इससे बाह्य प्रभावना होगी, अंतरंग में रत्नत्रय से प्रभावना होगी और बाह्य में प्रभावना काय से होगी। दान तपो जिन पूजा और विद्यातिशय। अब देखें अपन दान की प्रक्रिया आसान नहीं है। जैसे दान से प्रभावना होती है, वो दान कैसे पैसे से किया हो, खून पसीने की कमाई से, दूसरे की गर्दन पकड़ करके संचित किया हुआ तो डाकू भी संचित कर लेता है। उसके दान देने से आज तक कोई प्रभाव ना हुई है, ईमानदारी से था। डाकू सबका लूट करके फिर बाद में चौराहे पे खड़ा होके कहे कि मैं दान कर रहा हूं, तब भी आप उसे दानी नहीं मानेंगे, उसे डाकू ही मानेंगे। बहुत स्पष्ट सी चीज है, कोई कह नहीं पाता है, लेकिन अंतरंग में तो उसके यही होता है कि हाँ ठीक है भैया। आज इसीलिए तो जब बड़ी बड़ी राशियां दान दी जाती हैं, तब भी हमारे अंदर इंप्रेशन क्या आता है, ये आता है कि भैया गरीबों को कौन पूछता है, वे तो बड़े आदमी हैं, चाहे जैसी बेईमानी से पैसा कमावे उन्हें इनको बोलवाला है। किसी ने आज तक ये बर्बाही नहीं करी कि भैया क्या दान दिया है। हमेशा मन में यही भाव क्यों आया, ये द्वेष का भाव क्यों आया, दान देने वाले के प्रति सद्भावना क्यों नहीं हुई, क्योंकि दान दे मन हरक विषय को। दान देने वाले और देखने वाले के मन में हर्ष क्यों नहीं आया, क्योंकि वो दान विशुद्ध नहीं था, इसलिए उससे कोई खास प्रभावना नहीं हुई। अभी मुझे सुनने में आया कि एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाने वाले की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, काय की फैक्ट्री है मालूम, गुटका बनाने की, पान पराग बनाने की फैक्ट्री है, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है पान पराग अकेले का, और उसके नाम पर क्या खिलाया जा रहा है दुनिया जानती है। जिसमें कि अभी एक फोटोग्राफ आया, मुझे दिया गया फोटो, जिसमें कि पाउच को पान पराग के खोल करके फोटो लिया गया, उसमें इतनी आगे की छिपकली का मरी हुई सूखी हुई वो भी उसमें आ गई, और वो मसाला भी आ गया, धोखे से जो है पाउच में पैक हो गया। ये तय है कि उसमें इस तरह की चीजें मिलाई जाती, फिर भी एक जैन व्यक्ति इस तरह का काम कर रहा है और अपन उसकी जय जयकार कर रहे हैं, उसको मंच माला और माइक दे रहे हैं, क्योंकि उसने करोड़ों रुपए दान देकर के मंदिर बनवा दिया। वाह, ये प्रभावना का ढंग है, तब तो बहुत अच्छा है। तब ऐसी प्रभावना से तो किसी का कल्याण नहीं होगा, सिर्फ ये कहलाता है राजसिक दान, जो थोड़ी देर को सारी दुनिया को चमत्कृत करता है, लेकिन उसके कोई लाइफ लॉन्ग इफेक्ट्स नहीं होते, उससे किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलती। दान से भी मिलती है तो कैसे वाले दान से, आज भी लोग भामाशाह के दान का ध्यान रखते हैं, आज भी भामाशाह का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, और मुनि जनों के लिए लिखा है कि रत्नत्रय का दान देना सबसे श्रेष्ठ दान है। आप दें दान, किसी के भीतर श्रद्धा उत्पन्न कर दें, किसी को आत्मज्ञान दे दें, किसी को सदाचरण के लिए प्रेरणा दे दें, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। लेकिन ऐसा वाला दान जब अपने पास हो तब ना, अपनी ऐसी प्रगाढ़ श्रद्धा हो कि दूसरा देख करके वो स्वयं श्रद्धालु हो जाए, अपना ऐसा आत्मज्ञान हो कि दूसरे को आत्मज्ञान पाने की ललक उत्पन्न हो जाए, अपना ऐसा आचरण हो जिससे कि देख करके दूसरा भी कहे कि अरे वाह ये किस तरह से इतना अच्छा आचरण करते, मैं भी ऐसा ही करूंगा। नहीं, रात में खाते हैं तो कोई पूछे कि आप रात में खाते, जैनी हो कि हाँ, कहते सब चलता है। वाह, तो हो गई प्रभावना। आप कितनी भी प्रभावना कर लीजिएगा, अगर कथनी करनी में फर्क है तो कभी कोई प्रभावना नहीं हो सकती। आज कथनी करनी का फर्क बहुत हो गया। युधिष्ठिर महाराज के दिन लग गए, जब क्रोध नहीं करना इतना सा वाक्य सीखने में 6 महीने लग गए थे, और गुरुजी ने जब उन्हें पिटाई करना शुरू की और शांत रह करके फिर बोले कि याद हो गया मुझे पाठ। गुरुजी ने कहा है मेरा इतना होशियार बालक और 6 महीने में इतना सा वाक्य याद हुआ। बोले गुरुजी याद तो पहले ही दिन हो गया था, लेकिन जीवन में जब तक नहीं आए तब तक उस याद होने का क्या मकसद। आज आपने इतना मुझे डांटा पीटा, लेकिन फिर भी मेरे मन में आपके प्रति कोई कलुषता और कोई क्रोध नहीं आया। अब मैं कह सकता हूं कि मैंने पाठ सीख लिया कि क्रोध नहीं करना, क्रोध बुरा था। क्या ऐसा कथनी और करनी की एक रूपता हमारे जीवन में आएगी? आना चाहिए। इससे जो प्रभावना होगी, जिनेंद्र भगवान की पूजा, बहुत लोग जैन भगवान की पूजा रचा रहे हैं, बहुत लोग सिद्ध चक्र, अब तो सिद्ध चक्र और महा महा पूजाएं, पहले तो इक्का दुक्का साल दो साल में एकाद कोई महापूजा होती थी, अब तो आप देख लो कि महापूजा हर जगह महापूजा हो रही। लेकिन उस महापूजा से क्या हुआ ये देखा जाता है कि कितने इकट्ठे हुए, कितने आए। वो धर्मशाला का काम पड़ा है, वो मंदिर का काम पड़ा है। एक एक ऑर्डिनरी सा सिद्ध चक्र विधान कर लो, 10 लाख रुपए बच जाएंगे। पंचकरण कर लो, 50 से और 80 लाख तक बच जाएंगे। सबके अलग अलग बिल्कुल बने हुए हैं मापदंड, सब कमर्शलाइज हो गया पूरा का पूरा। वो जो खर्च हुआ है, वो जो पेंडाल में गया है, वो जो माइक वाले के यहां गया और वो टेंट हाउस वाले के पास गया, और वो जो हाथी वाले के पास गया, वो नहीं दिखता। वो जो 20 लाख रुपए खर्च हो गए वो नहीं दिखते। वो जो 10 लाख बच गया ना इस विधान से, उसकी जय जय का कि क्या साहब, किसके सानिध्य में हुआ था साहब, आनंद आ गया। न भूतो न भविष्यति, कभी हो गई नहीं जैसे कभी हुआ ही नहीं। ये इसमें हम चमत्कृत हो रहे हैं। वास्तविक प्रभावना इसलिए भूल गई। प्रभावना तो की थी मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान से, जो आज भी याद है सबको, बाकी तो भूल गए। किस किसने कितने सिद्ध चक्र किए थे, उनको पटिया लगा के रखना पड़ता। बाबा मैना सुंदरी का तो एक पटिया नहीं है कहीं पर कि इनने विधान किया था सिद्ध चक्र का और 700 श्रीपाल के साथ में 700 कोड़ियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया था, कहीं एक शिलालेख शिलापट्ट नहीं मिलता। यहां तो जो है आपको सिद्ध चक्र के शिलालेख लगाना पड़ेंगे कि आप इतने सिद्ध चक्र इनने करवाए। भैया जरा सा विचार करना, बात थोड़ी सी लगेगी बहुत ऐसी कि जरा गड़बड़ है, जो चल रहा उसको चलने दो। मैं कौन होता हूं, वैसे भी जो चल रहा वो तो चले गई, लेकिन वास्तविकता के बोध से वंचित रहने का अपराध क्यों करें। इसलिए हमें वास्तविकता का बोध भी होना चाहिए कि जिन पूजा महापूजा करना तो है, लेकिन जिन पूजा से मेरे परिवार में क्या परिवर्तन आया। जिसने जिन पूजा करवाई उसके पूरे परिवार ने पूरे जीवन भर जिन पूजा का नियम ले पाया क्या, जरा विचार करें। जिसने जिसने सिद्ध चक्र विधान करवाया है या जिस समाज के चंदे से सिद्ध चक्र विधान हुआ है, बड़ी प्रभावना हुई, उस पूरी समाज के लोगों ने भगवान जिनेंद्र की पूजा रोज करने का जिंदगी भर का नियम लिया है क्या? अगर ले लिया है तो जिन पूजा सार्थक हो गई महापूजा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा विराजमान करवाने वाला पूरे जीवन भर जिनेंद्र भगवान की पूजा का नियम ले ले, और बल्कि ये तक ले ले कि मेरी आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाऊंगा ये दायित्व कि मैंने प्रतिमा पधराई है, पूजा कम से कम करते रहना, नहीं तो किसके जिम्मे पधरा दी, कौन करेगा पूजा, कौन करेगा अभिषेक। लेकिन अभिषेक पूजा करने वालों की संख्या उसी समय दिखाई पड़ती है जब कोई विधान होता है, उसमें भी आराम से बैठ करके खाती करके चलता रहता है, क्योंकि अपन को तो कुछ करना नहीं। अपन को तो जब कोई बाजू वाला कहेगा कि हाँ तो स्वाहा, फिर उसके बाद आराम, बोलना ही नहीं। बोलने के लिए तो आर्केस्ट्रा पार्टी आई भैया, पूजा पूरा विधान तो वही करेगी। अपन को तो बाजू वाला धीरे धक्का कहेगा, वो कहेगा स्वाहा हाँ स्वाहा, बैठे हैं बस। ये जिन पूजा का हमारा ढंग, इसको हमें एनालिसिस करना चाहिए। कोई उलाना नहीं दे रहा हूं, कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, हम तो एनालाइज कर रहे हैं कि हमने क्या कर लिया अपने हाथों से। जिस भगवान की पूजा को, उनके गुणगान को मुझे अपने इस मुख से बोलकर मुख को पवित्र करना था और अपने जीवन को पवित्र करना था, मैंने उसे आर्केस्ट्रा